समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है कार्यक्रम परिक्रमा।
तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चरागों से लो जा रही थी।
जीने की तो वजह मिल गई है, बड़ी बेवजह जिंदगी जा रही।
तुम आ गए हो, नूर आ गया।
जिंदगी बेवजह जा रही हो या ना जा रही हो, बट आपकी शाम यकीनन कोई ना कोई हसीन वजह के साथ जरूर गुजरेगी। बिकॉज जी हाँ, वी आर हियर, हम आ गए हैं परिक्रमा लेके हस्बे दस्तूर। इट्स जस्ट 4:30 इन द स्टूडियो क्लॉक एंड वी आर हियर विद परिक्रमा। यस, आवर न्यूज मैगजीन दैट गिव्स द परफेक्ट रैप टू योर डे, ताकि आप शाम की चाय की चुस्की के साथ हमारा परिक्रमा भी सुने, उसका लुत्फ उठाए। एंड यू आर अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट बज फ्रॉम द कंट्री एंड ऑल्सो कि हमारे डिफरेंट जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैं वो क्या कुछ खबरें लाए हैं। विन दिस एडिशन इट्स मी सायरा मुज्तबा वेलकमिंग यू विद सर फिरोजी। नमस्कार सर फिरोजी।
नमस्कार सायरा। और क्योंकि एक बहुत ही खास गीत हमने चलाया है तो उस शख्सियत की भी हम बात कर देते हैं। ये जो गीत जुड़ा हुआ है ये कमलेश्वर जी से जुड़ा है, जिनकी आज पुण्यतिथि है, उनके बारे में भी और बात करेंगे। फिलहाल कार्यक्रम को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हेडलाइंस की। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया।
पैक्ट साइंड इन द फील्ड्स ऑफ ट्रेड, सिक्योरिटी, डिफेंस, मोबिलिटी एंड क्लीन हाइड्रोजन अमंग अदर्स।
भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 दक्षिण गोवा में शुरू, प्रधानमंत्री ने कहा ये ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है।
डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह चेयर्स ऑल पार्टी मीटिंग इन न्यू दिल्ली अहेड ऑफ बजट सेशन ऑफ पार्लियामेंट।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठे बयान को खारिज किया, दोहराया जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं।
And in under-19 cricket World Cup, Super 6 clash underway between India and host Zimbabwe at Bulawayo. And now it's time for our segment Dateline India, in which we take a look at the developments that are taking place at the national or global level. And today is 27th Jan. Yes, the next day right after Republic Day. तो जाहिर सी बात है आज हम लोग बात करेंगे जो Republic Day parade को बहुत ही खास बनाता है, and those are the tableaus. A warm salute to all our listeners across the country and beyond our borders as well. Today we bring you a very special Republic Day program. A celebration not just of a date in history, but of a living, breathing republic. On 26th January 2026, India proudly celebrated its 77th Republic Day. And at the heart of this celebration lies a tradition that captures India's soul like no other. Yes, the Republic Day tableaus. Let's take a journey across India. And as the sun rose over Kartavya Path in New Delhi, 30 magnificent tableaus rolled forward, carrying with them the dreams, traditions, struggles and successes of a billion Indians.
बिल्कुल सायरा। और इस वर्ष की झांकियों में दो बहुत ही शक्तिशाली मंत्र देखने को मिले जो इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह के केंद्र में भी रहे। ये मंत्र हैं स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, समृद्धि का मंत्र, आत्मनिर्भर भारत।
Malam,
और सायरा, एक चीज जिसने इस वर्ष के गणतंत्र दिवस समारोह को और भी खास बना दिया वो था वर्ष 2026 में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 वर्ष पूरे होने हुए हैं और 150वीं वर्षगांठ का प्रतीक रहा 2026। एक ऐसा गीत जिसने स्वतंत्रता की भावना को प्रज्वलित किया और आज भी राष्ट्रीय गौरव को प्रेरित करता है। इस भावपूर्ण श्रद्धांजलि के साथ ही आत्मनिर्भर भारत की कहानी भी जुड़ी है, जो आत्मविश्वास से भरपूर, नवोन्मेषी और प्रगतिशील है। ये सभी प्रस्तुतियां भारत की स्वतंत्रता से आत्मनिर्भरता तक, औपनिवेशिक शासन से वैश्विक नेतृत्व तक की यात्रा को दर्शाती हैं।
Yes, Sir Firozi, it was in the year 2025 when we actually celebrated 150 years, but because this Republic Day was the first when we celebrated 150 years of Vande Mataram, to zahir si baat hai, ye wala Republic Day to kuch khas ho nahi tha. And let's now travel across the length and breadth of India, state by state, story by story. Taking a journey towards Northeast, let's go to Assam, with themes of Ashari Gandhi, which is a terracotta craft village of Assam. Assam's tableau celebrates the artisans of Ashari Gandhi, whose terracotta creations have shaped Assamese culture for generations. Molded from humble clay, these artworks represent resilience, sustainability, and self-reliance, values that are deeply embedded in India's civilizational ethos.
और वहीं जम्मू और कश्मीर से भी खूबसूरत नजारे देखने को मिले। इस वर्ष झांकी का विषय रहा हस्तशिल्प और लोक नृत्य। पश्मीना कला से लेकर ऊर्जावान लोक नृत्यों से सजी ये झांकी भारत की शांतिपूर्ण, रचनात्मक और सांस्कृतिक छवि को दर्शाती है। और वहीं बात करें सायरा पंजाब की, तो झांकी में श्री गुरु तेग बहादुर साहिब जी की शहादत के 350 वर्ष को विषय के रूप में प्रस्तुत किया गया। ये बलिदान साहस और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए किए गए कार्यों को दर्शाती है।
If we talk about two more states in the Northeast, well, Manipur told a story of transformation. Local produce finding global markets, empowering farmers and artisans. And talking of Nagaland, well, a vibrant explosion of color and rhythm, celebrating tourism, entrepreneurship and cultural pride of the Naga people. If we go down southwards, we go to Kerala first, where tableau showed the theme of water metro and 100% digital literacy. A glimpse into India's future, eco-friendly transport, digital empowerment and inclusive development. And if we talk about Tamil Nadu, the temple heritage was at the forefront, from ancient temples to modern industries. Tamil Nadu reflects how tradition and technology together power self-reliance. और पुदुचेरी की तो बात ही अलग है। Yes, it showcases the theme Heritage and Auroville's Vision, a blend of Indo-French culture and universal human values. पुदुचेरी reflects harmony, sustainability and global cooperation.
और सायरा, अगर बात करें गुजरात की, तो महात्मा गांधी के स्वदेशी आह्वान से लेकर आज के वैश्विक विनिर्माण केंद्रों तक गुजरात की झांकी स्वतंत्रता को उद्यम से जोड़ती हुई दिखी और ये दर्शाती है कि आत्मनिर्भरता किस तरह सशक्त राष्ट्र का निर्माण करती है। वहीं राजस्थान ने बीकानेर स्वर्ण कला को विषय के रूप में प्रस्तुत किया। ये झांकी उस्त कला की सुंदरता से जगमगा रही थी।
And at the heart of India, that is Madhya Pradesh, the theme was Punya Shlok Lok Mata Devi Ahilya Bai Holkar, a woman who was remembered for her justice, development and compassion centuries ahead of her time. Venturing towards Odisha, rooted in tradition yet rising in innovation, Odisha highlights its evolution from agrarian strength to a modern, technology-driven economy. और अगर बात की जाए पश्चिम बंगाल की, सर फिरोजी, तो बंगाल का नाम सुनते ही सबसे ज्यादा जहन में अपने आप ही जो है रिचनेस ऑफ कल्चर अपने आप ही आ जाती है। इवन रेवोल्यूशनरी पोएट्स, थिंकर्स, दे ऑल वर रूटेड इन बंगाल। थिंकर्स एट द सेंटर स्टेज, जस्ट लाइक द स्टेट्स रिच हिस्ट्री, बंगाल्स टैब्लो सल्यूट्स इट्स पिवोटल रोल इन शेपिंग इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल।
और सायरा, जब हम बात करते हैं सशक्त भारत के निर्माण की, तो उसमें भारतीय मंत्रालयों और सशस्त्र बल जो है उनकी भूमिका को नहीं नकारा जा सकता, जो भारत के शासन और शक्ति को साकार रूप देते हैं। तो आइए उन विषयों पर चर्चा करते हैं जिन्हें उन्होंने कल कर्तव्य पथ पर साकार किया। सबसे पहले बात वायुसेना के मुख्यालय की, जिसने पूर्व सैनिकों और उनके अमिट योगदान को सम्मानित किया। वहीं नौसेना मुख्यालय ने समुद्री समृद्धि पर प्रकाश डाला। इसके अलावा त्रिसैनिक झांकी ने ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से एकता को प्रदर्शित किया।
That's right and many other, because अभी recently हम लोगों ने देखा कि जिस तरह से हमारी ऑल द ट्राई फोर्सेज, तीनों फोर्सेज ने ऑपरेशन सिंदूर में किस तरह से जो है मुंह तोड़ जवाब दिया दुश्मन को। आई थिंक दैट वॉज दिस ईयर्स रिपब्लिक डे परेड वॉज ऑल्सो अ ट्रिब्यूट टू ऑल द थ्री फोर्सेज एंड द जॉइंटनेस ऑफ द थ्री फोर्सेज।
जी
एंड वेल, रिपब्लिक डे टैब्लो आर नॉट जस्ट फ्लोट्स विद ब्यूटिफुल मैनिकिन्स, दे आर इनफैक्ट मूविंग क्लासरूम्स, लिविंग म्यूजियम्स and rolling dreams. They remind us that India's strength lies in its unity, diversity and self-belief. And as these tableaus glide down the Kartavya path on Republic Day, they carry one powerful message. India remembers, India innovates and India rises. Vande Mataram, Jai Hind!
और सायरा, अब समय है अपने श्रोताओं को देश भर की परिक्रमा पर लेकर चलने का और उन सॉफ्ट स्टोरीज की जानकारी देने का जो हमारी मेन हेडलाइंस में जगह नहीं ले पाती। सबसे पहले कहाँ चले सायरा?
दैट्स राइट सर फिरोजी, यू आर सो राइट, बिकॉज यू नो आवर कॉरेस्पॉन्डेंट्स हैव सो मेनी स्टोरीज, बट हम लोग न्यूज बुलेटिन में खाली जो हार्ड न्यूज जाती है वो देते हैं, एंड दैट्स व्हाई वी हैव दीज वंडरफुल न्यूज मैगजीन्स लाइक परिक्रमा फॉर यू। फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग आवर जर्नी फ्रॉम हैदराबाद। वेल, नीनी कोल ब्लॉक टेंडर्स ऑफ सिंगारेणी हैव बिकम focal point of debate in the state, and as it has triggered a controversy over the coal block tenders, the Singareni Collieries Company Limited or SCCL has cancelled the tenders process to avoid criticism of opposition parties. The Government of India has sent a two-member expert committee to study the issue. Let's hear more from our correspondent.
Union Minister of Coal and Mines Kishan Reddy, who visited the Singareni Collieries recently, has assured that the Singareni Collieries Company Limited will be protected and necessary reforms will be implemented. He stated that the central government is willing to make changes in the rules and regulations to support the company. During his visit to Khammam, Reddy reviewed the company's progress and interacted with SCCL officials, contractors and union representatives. He emphasized the need for reforms Singareni Collieries Company Limited and suggested measures to reduce costs. The minister also announced that the central government is willing to conduct geological surveys to explore new coal deposits and establish new projects. He assured that the central government will provide full support to Singareni Collieries Company Limited and work with the state government to protect the company's interests. The minister met with MLAs, MPs and union representatives during his visit, discussing various issues related to Singareni Collieries Company Limited, including pending payment and workers' welfare measures. Saptagiri for Parikrama, Hyderabad.
और अब बात कर रहे हैं लद्दाख की। कारगिल जिले में आज सुबह भारी हिमपात हुआ है, जिससे किसानों को काफी राहत मिली है। कारगिल के गोमा जिले के किसान ने बताया कि समय पर हुआ हिमपात प्राकृतिक जल भंडार का काम करता है और गर्मियों के महीने में पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करने में सहायक होता है। हमारे संवाददाता इस पर और अधिक जानकारी दे रहे हैं।
Snowfall ranging from 3 inches to nearly 1.5 feet has been recorded at different locations across the district. According to the Meteorological Center Leh, light to moderate snowfall is likely at many places in Kargil district and at scattered places in Leh district, mainly over higher reaches on 27th January. The weather is expected to remain partly to generally cloudy from 28th to 31st January, while partly cloudy conditions are forecast from 1st to 5th February. The Meteorological Department has also issued a warning of heavy snowfall over the Zojila Dras axis today, with high risk of snow avalanches along the Dras-Zojila-Sonamarg stretch. Meanwhile, the district administration, Kargil, has put all its machinery on alert and has started snow clearance operations in and around Kargil town and major roads to ensure smooth movement. A 24/7 emergency helpline has been activated and people have been advised to stay updated on weather and road conditions and plan their travels accordingly. For Parikrama, this is Anad Ali from Kargil, Union Territory of Ladakh.
And now when we move towards the northeast, Sir Firozi, we are going to Nagaland. Well, Nagaland has taken a significant leap into the future of technology with the launch of its first ever drone school and drone center of excellence. The state-of-the-art facility was formally inaugurated yesterday at the Nagaland GIS and Remote Sensing Center in Kohima by Chief Minister Nephew Rio as part of the 77th Republic Day celebrations. Let's hear more from our Kohima correspondent.
The pioneering initiative implemented by the Nagaland Geographic Information System and Remote Sensing Center under the Planning and Transformation Department aims to equip youth with advanced drone technology skills while promoting innovation-driven employment across the state. The drone school will offer DGCA-compliant remote pilot certificate courses along with short-term non-DGCA programs in first-person view flying, drone repair and maintenance, drone data analysis and mapping. The first batch of 50 trainees sponsored by the Nagaland Skilled and Entrepreneurship Development Mission has commenced training from today. Trainees will receive free training across multiple specializations along with placement assistance and industry linkages. The institution is equipped with modern classrooms, laboratories, simulators, assembly workshops and designated flying grounds at Chesema and Tizama under Kohima district. In addition, the facility will function as a center of excellence for UAV research, innovation and technical support to various government departments. The project has been allocated over 2 crore rupees under the state plan for the financial year 2025-26. With the launch of the drone school, Nagaland marks a decisive step towards technology-led growth and youth empowerment. For Parikrama, Asunyu from Kohima.
और सायरा, अभी कुछ और देर हम पूर्वोत्तर भारत में ही रहने वाले हैं क्योंकि अब बात कर रहे हैं अरुणाचल प्रदेश की। अरुणाचल विकास परिषद के अध्यक्ष तेची गुबिन को सामाजिक क्षेत्र में उनके विशिष्ट योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। एक रिपोर्ट।
Arunachal Vikas Parishad President Techi Gubin, who was named for the Padma Shri Award in recognition of his distinguished contribution to social service, said, "Working for betterment of others brings him joy." Gubin is among 54 recipients named for the Padma Shri, India's fourth highest civilian award. He is among 10 eminent personalities from the Northeast selected for the coveted civilian honor this year. Assam leads with 5 awardees, while there was one recipient each from Arunachal Pradesh, Manipur, Tripura, Nagaland, and Meghalaya. Gubin retired as the Chief Architect of Arunachal Pradesh in 2024 and had also served as the Director of Housing in the state government. He hails from KB village in KE Panyar district. Besides serving as the President of the Arunachal Vikas Parishad, the 62-year-old is the National Vice President of RSS affiliate Akhil Bharatiya Vanvasi Kalyan Ashram. The social worker said that the announcement came as a surprise and that he had not expected the honor. Expressing gratitude, he thanked the union government, the state government and the people of Arunachal Pradesh. He added that he has been engaged in social work since childhood and does not work for money. He said, "Whatever he does is to bring happiness to people. He enjoys it and will continue to serve society as long as he lives." For Parikrama, Kenyum Ango, Akashwani, Itanagar.
श्रोताओं, अब आपको लेकर चल रहे हैं खेल के मैदान की ओर। बात करेंगे क्रिकेट की। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच बुलावेओ में सुपर सिक्स चरण का मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 46 ओवर में 6 विकेट पर 301 रन बना लिए हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रहा है।
And if we talk about some news from the world of business, wealth benchmark domestic equity indices, the Sensex and the Nifty ended the session with modest gains today. Both indices oscillated between positive and negative territory throughout the day before closing higher. Sensex climbed 320 points to close at 81,857, while Nifty added 127 points or 0.5% to settle at 25,175. For more updates about market activities, tune in to Akashvani's bilingual program Market Mantra at 6:30 p.m. this evening.
श्रोताओं, अब हम याद करेंगे महान स्वतंत्रता सेनानियों को और बात करेंगे कुछ महान व्यक्तियों की जिनकी आज पुण्यतिथि, जयंती या जन्मदिन है.
We remember freedom fighter and the 8th president of India, Ramaswamy Venkataraman, who died on the 27th of January 2009. In his young age, he was an activist of the Indian independence movement and participated in the Quit India movement.
Venkataraman was born on 4th December 1910 in Rajamadam village, Tanjavur district, Madras Presidency. He studied law at the University of Madras and began his legal practice in 1935 in the Madras High Court and the Supreme Court of India. While practicing law, Venkataraman was drawn into the movement for India's freedom. His active participation in the Quit India movement of 1942 resulted in his detention for 2 years under the Defence of India rules.
Venkataraman's interest in the law continued during this period. In 1946, when the transfer of power from British to Indian hands was imminent, the government of India included him in the panel of lawyers sent to Malay and Singapore to defend Indian nationals charged with offences of collaboration during the Japanese occupation of those two places. He also helped draft India's constitution, which was adopted in 1950.
Venkataraman was an integral part of the parliamentary team that redesigned India's provincial parliament during the period between 1950 and 1952. In 1950, he was elected to Free India's Provisional Parliament and to the first parliament from 1952 to 1957. Although re-elected to Parliament in 1957, Venkataraman resigned his seat in the Lok Sabha to join the state government of Madras as a minister. Venkataraman held the portfolios of industries, labour, cooperation, power, transport and commercial taxes from 1957 to 1967. During this time, he was also the leader of the upper house, namely the Madras Legislative Council.
Venkataraman was appointed as a member of the Union Planning Commission in 1967 and was entrusted the subjects of industry, labour, power, transport, communications and railways. He held that office until 1971. In 1977, Venkataraman was elected to the Lok Sabha from Madras South constituency and served as an opposition member of parliament and chairman of the Public Accounts Committee.
In the 1980s, as the Union Minister of Defence, Venkataraman was credited for initiating India's missile program. He shifted APJ Abdul Kalam from the space program to the missile program and consolidated the entire missile system, naming it as Integrated Guided Missile Development Program. Later, he served as the Vice President of India and then as a President of India starting 1987, where he worked with 4 prime ministers and appointed 3 of them.
We also remember educator and writer Acharya Sitaram Chaturvedi, who was born on the 27th of January 1907 in Varanasi, Uttar Pradesh. Chaturvedi wrote more than 70 plays in Hindi, Sanskrit and English and directed, staged and acted in many others. In 1935, he wrote about the life of Mahamana Madan Mohan Malviya with essays and lectures. In 1972, he wrote a biography on Mahamana under the Builders of Modern India series of the Publications Division, Ministry of Information and Broadcasting, Government of India.
He was an active participant in Bombay's Prithvi Theatre and was conferred the title of Abhinav Bharat. He also wrote more than 250 books on language, grammar, literature, plays, theatre, etc. He wrote biographies of Tulsidas and Vallabhacharya. and edited the collected works of Kalidas. In 1968, he founded the Bal Vishwavidyalay in Varanasi with the aim of multidimensional, progressive and character-building personality within a child. He died on February 17, 2005. The 11-day theatre festival Natya Andolan in Varanasi is dedicated to the memory of Sitaram Chaturvedi. We salute the great Indian.
We're also remembering Savita Ambedkar today. We all know Sarfirozi ke kehte hain ki har kamyab shakhs ke piche ek aurat ka haath hota hai, and the architect of India's constitution B.R. Ambedkar was married to Savita, and in fact Savita was the one who cared for his health, and he credited her for this in the preface of his book The Buddha and His Dhamma. She was a social activist and physician by profession. In fact, B.R. Ambedkar's first wife Ramabai Ambedkar had died in 1935, and it was Savita who actually became the pillar of strength in his life. We are remembering Savita Ambedkar today.
आज हम निखिल रंजन बैनर्जी जी को भी याद कर रहे हैं. इनकी आज पुण्यतिथि है. ये 20वीं सदी में भारत के प्रमुख सितार वादकों में से रहे. इन्हें 1987 में पद्म भूषण, 1974 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और 1968 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया. आइए सुनते हैं इनकी एक सितार प्रस्तुति. आज पुण्यतिथि है साहित्यकार कमलेश्वर जी की भी. कहानी, उपन्यास, पत्रकारिता, स्तंभ लेखन, फिल्म पटकथा जैसी अनेक विधाओं में इन्होंने अपनी लेखन प्रतिभा का परिचय दिया. 2005 में इन्हें पद्म भूषण अलंकरण से राष्ट्रपति महोदय ने विभूषित किया. इनकी पुस्तक कितने पाकिस्तान पर साहित्य अकादमी ने इन्हें पुरस्कृत किया.
That's right, and among his most well-known works are films like Aandhi, jiska gaana hum log ne shuruaat mein aapko sunaya tha, Mausam, Choti Si Baat, and even Rang Birangi. However, we bring a dialogue from the film A Manush.
Zindagi ke naav to toot gaye, Inspector Sahab. Woh saali ek machli maarne ki naav bachi hai. Usi ki maramat kar raha hoon.
Kijiye.
To aap ja rahe hain? Acha ji, to phir mulaqat hogi. Arey woh pata.
Haan sir.
Ye daroga to bhaag liya re.
खाली भागा उस्ताद, दुम दबा कर भागा.
इनफैक्ट सर फिरोजी, जो कहते हैं ना कि हिंदी साहित्य में जो नई कहानी का जो मूवमेंट था, दैट वाज ऑब्वियसली इनकम्प्लीट विदाउट कमलेश्वर, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव एंड भीष्म साहनी बीइंग द अदर्स हु लेफ्ट एन इनडेलिबल मार्क ऑन हिंदी लिटरेचर. नई कहानी मूवमेंट. Another very famous personality of Hindi cinema, we are going to remember him. लेकिन उनका नाम ही बताने से पहले अगर खाली आप उनका डायलॉग सुनेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे किसकी बात है.
बस की हर एक उनके इशारे में निशान, और करते हैं मोहब्बत तो गुजरता है गुमा. और
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह.
यार अब न वो समझे हैं न समझेंगे मेरी बात, दे और दिल उनको जो न दे मुझको जुबान.
बहुत हो बहुत हो.
अभी आपने जो आवाज़ सुनी, ये थी अभिनेता भारत भूषण की, जिनकी आज पुण्यतिथि है. अपने अभिनय के रंगों से कालिदास, तानसेन, कबीर और मिर्जा गालिब जैसे ऐतिहासिक चरित्रों को नया रूप देने वाले ये अभिनेता रहे. भारत भूषण के फिल्मी करियर में निर्माता निर्देशक सुहराब मोदी की फिल्म मिर्जा गालिब का अहम स्थान रहा, और इसी का एक डायलॉग कह लें या एक जुगलबंदी शायरी की कह लें, वो हमने सुनी सायरा.
That's right. And before we move ahead to other personalities, of an important news regarding the Prime Minister is coming in. Well, Prime Minister Modi chaired the India-EU Business Forum along with President of European Commission Ursula von der Leyen in New Delhi. The forum brought together business leaders from both sides. Speaking on the occasion, Mr. Modi said that Indian investment in the EU has two sides, and that will provide easy access to EU market for India's labor-intensive products.
Is it Bharat ke? लेबर इंटेंसिव उत्पादों को यूरोपियन यूनियन मार्केट में इजी एक्सेस मिलेगा. इसमें विशेष तौर पर टेक्सटाइल, जेम्स एंड ज्वेलरी, ऑटो पार्ट्स और इंजीनियरिंग गुड्स शामिल हैं. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोसेस्ड फूड और मरीन प्रोडक्ट्स उसमें नए अवसर बनेंगे.
इनफैक्ट जो इससे पहले मैंने क्यू दिया था ना कि उनके नाम बताने से पहले अगले हस्ती का अगर उनका डायलॉग सुने तो लोग समझ जाएंगे, वो एक्चुअली भारत भूषण का क्यू नहीं था. आप लोग पक्का समझ जाएंगे कि किसकी बात हो रही थी.
बड़ी बड़ी बातें करनी तो मुझे भी बहुत आती है, लेकिन एक बात मत भूलिए डीएसपी साहब कि सारा शहर मुझे लॉयन के नाम से जानता है और इस शहर में मेरी हैसियत वही है जो जंगल में शेर की।
Yes, the so-called जो उनका प्रोनाउंसिएशन था लाइन का लॉयन ऑफ हिंदी सिनेमा इज नन अदर देन अजीत। टुडे वी आर रिमेम्बरिंग हिम ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी। हिज रियल नेम वॉज हामिद अली खान, एन एक्टर हु वॉज एक्टिव इन सो मेनी फिल्म इन दैट एरा। इनफैक्ट 200 से ज्यादा फिल्में उन्होंने की एंड सम ऑफ हिज वेरी फेमस एंड पॉपुलर फिल्म वर बेकसूर, नास्तिक, बड़ा भाई मिलन एंड बारादरी। ऑफकोर्स ही वॉज द सेकेंड लीड इन मुगले आजम एंड नया दौर एज वेल। एंड वक्त के दामन में ज्यादा गुंजाइश नहीं है सर
जी, बिल्कुल सायरा। इसके साथ ही श्रोताओं इजाजत दीजिए सरफिरोजी और सायरा मुश्तबा को, परिक्रमा कार्यक्रम यहीं समाप्त करने की। नमस्कार, नमस्कार।